میکنم شنده. तो बाबा कह रहे थे ब्राह्मण जन्म विशेष है, ब्राह्मण धर्म विशेष है, ब्राह्मण की कर्म भी विशेष है, ब्राह्मणों को वरदान है फरिश्ता बाबा। तो जो वरदान मिला है और जो लक्ष्य मिला है दोनों ही स्मृति में रहे। फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपनी देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई व्यक्ति की तरफ, वस्तु की तरफ आकर्षण कितने परसेंटेज में रही। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंटेज रही। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा, साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्का रहे, मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे, इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इन सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे, ब्राह्मण परिवार में के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे, इसको कहा जाता है फरिश्तेपन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हो, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप से समर्थि स्वरूप बन जाते। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना, तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजोरिटी है और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति की मेजोरिटी में माइनॉरिटी है। तो बाबा फरिश्ते की परिभाषा बता रहे हैं, फरिश्ता अर्थात सबसे पहला तो संस्कार संसार, इन तीनों से रिश्ता नहीं। संसार में संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण या किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण, वो भी कितने परसेंटेज में रही। तो पहले कि संसार से रिश्ता नहीं, संसार में भी कोई भी आकर्षण, संसार की कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे, उसमें इस संसार का कोई भी संबंध हो, फिर किसी की भी देह, अपनी देह या किसी और की देह, तीसरा देहधारी व्यक्ति और वस्तु, इन सभी के आकर्षण से जो मुक्त है उसे फरिश्ता कहा जा सकता है। ऐसा कोई संबंध ना हो जो हमारे मार्ग में बाधा हो। किसी देहधारी व्यक्ति के तरफ आकर्षण, इस संसार की कोई भी जीवधारी देहधारी हमें आकर्षित न करे, ना ही उसकी देह, ना वो, ना ही हमारी अपनी देह, ये सबसे बड़े लक्ष्य है। बाबा कहते हैं ये आकर्षण कितनी परसेंटेज में रही वो निकालो। ये तो था संसार, वैसा ही संस्कार, ये उससे भी सूक्ष्म है। संसार को छोड़ देना आसान है, संबंध भी तोड़ दिए सारे, देह की तरफ भी कोई आकर्षण नहीं, ना ही देहधारी की तरफ, ना ही कोई संसार की वस्तु आकर्षित करती है, परंतु दूसरा जो लक्ष्य है वो संस्कार। अब ये संस्कार हमारे अपने हैं, इनसे संबंध तोड़ना ये बड़ा पुरुषार्थ है, और वो भी किसी भी तरह से व्यक्त ना हो, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंटेज रही। तो अपने ही संस्कारों से मुक्त होना है, वो संस्कार जो ज्ञान के विरुद्ध है, वो संस्कार जो ज्ञान में, योग में, प्रगति के मार्ग में बाधा है, वो संस्कार जो कल कह रहे थे ना कि स्वयं को निर्दोष सिद्ध करते हैं, हम चाहते नहीं है परंतु हो जाता है, ऐसे वो संस्कार वो कहाँ कहाँ से व्यक्त हो रहे हैं, चाहे वो संकल्पों में आ रहे हैं, चाहे वो वृत्ति बन रहे हैं, चाहे वो वाणी द्वारा प्रकट हो रहे हैं, चाहे वो कर्म या संबंध संपर्क के रूप में आ रहे हैं, ऐसे सारे ही संस्कार, नए जीवन के संस्कार और पुराने जीवन के संस्कार, जो पुराने संस्कार है वो हमारे नहीं है, इन संस्कारों से मुक्त होना हमारी लड़ाई है, इन संस्कारों के साथ इनको हमें जीतना है। कौन से वो पुराने संस्कार है कि जो होने नहीं चाहिए परंतु है, स्थूल वाले में, सूक्ष्म वाले कौन कौन से हैं? वो तो थोड़ा स्थूल हो गया, सूक्ष्म में क्या है? देह को देखना ये एक संस्कार है, क्योंकि दिखता सामने देह है, देह की तरफ देखना, केवल देखना। जिन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है वो अपनी कामवासना की तृप्ति देह को देख कर करते हैं, बात कर कर करते हैं, और ऐसे कुछ संस्कार है जो प्रकट हो रहे हैं। संकल्प के रूप में प्रकट होने वाले कौन से संस्कार है? जो संकल्प आ रहा है सूक्ष्म, उसमें सूक्ष्म अति सूक्ष्म इच्छाएं वासनाएं संकल्प में बदला लेने की भावना, यह अति सूक्ष्म संस्कार है, किसी से बदला लेना चाहना और थॉट क्राइम्स कहा जाता है उसे अंग्रेजी में, थॉट क्राइम, क्रिश्चियनिटी में थॉट क्राइम्स कहते हैं, वो अपराध जो संकल्पों के स्तर पर होते हैं, थॉट क्राइम्स, उसमें सबसे ज्यादा अपराध काम के होते हैं, जो विचार संकल्प उठता है और चला जाता है, उठता है और चला जाता है, वो वाणी में भी अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, ना ही कर्म तक आ रहा है, केवल संकल्पों तक ही है, परंतु हमें उन संस्कारों से, वो सारे ही पुराने संस्कार, ऐसे किसी भी पुराने संस्कार की आकर्षण ना हो। दूसरा एक है फील करना, बुरा लगना, किसी ने कुछ कहा उसको फील करना, अंदर ही अंदर दुखी होना, अंदर ही अंदर मूड चेंज होना, अंदर ही अंदर मूड ऑफ होना, ये सारे संस्कार है। अंदर ही अंदर चाहना रखना कि कोई हमें देखे, कोई हमें जाने, कोई हमें प्यार करे, कोई हमारी केयर करे, ये सारे संस्कार है, सूक्ष्म इच्छाएं है। व्यक्ति स्वयं के ही दुखों से दुखी है, उसके सारे ही दुख स्वरचित है, पेन सेंटर्ड एक्सिस्टेंस, पेन सस्टेन्ड एंड पेन सेंटर्ड एक्सिस्टेंस जो है वो स्वरचित है, हमारे सारे ही दुख स्वरचित है, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि इसके वजह से है, इसके वजह से है, इसके वजह से है, ये परिस्थिति की वजह से है, ये जो हुआ उसके वजह से है, हमारे दुखों का कारण ना तो कोई व्यक्ति है, ना तो कोई परिस्थिति है, ना ही किसी से मिलने वाले प्यार का अभाव, कुछ नहीं है, हमारे सारे ही दुख स्वरचित है, वो सारे दुखों का कारण हमारे ही अपने संस्कार है, हमें उन संस्कारों से मुक्त होना है, अपने पुरानों संस्कारों से, संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाना फिर भी आसान है। संसार, व्यक्ति, देह, वस्तु, उससे मुक्त हो गए, परंतु ये जो संस्कार है, अभी लड़ाई इनके साथ है, इनसे ऊपर चले जाना, आसक्ति अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चाहिए, मान सूक्ष्म इच्छा है, कोई पूछे तो वो संकल्प रूप में भी ना हो, वृत्ति के रूप में ना हो, वाणी के रूप में भी ना हो, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में भी ना हो, वो सारे ही हमें लिस्ट बनानी अपनी कि जो मार्ग में बाधा है, जो ईश्वर से विमुख करता है, ऐसी अवस्था का नाम फरिश्ता है। फरिश्ता कोई एक ऐसा जीव नहीं है कि जिसके खाली पंख है और वो उड़ रहा है, ये आत्मा की स्थिति का नाम ही फरिश्ता है, आत्मा की ऐसी स्थिति की जिसमें वो निरंतर एक आनंद की अवस्था में है। व्यक्ति संपूर्ण दुख में डूबे हुए है, परंतु अध्यात्म के बारे में तर्क वितर्क करते हैं। है दुख में, परंतु तर्क अध्यात्म का करते हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं आंखें बंद करता हूं और ये सिद्ध करके बताओ कि प्रकाश है, तब आंख खोलूंगा, मुझे ये सिद्ध करके बताओ कि प्रकाश है तो फिर मैं आंख खोलूंगा, ऐसी ही गति है। जो अति तर्क में जाते हैं उन्हें ये इन सब में से किसी भी चीज का अनुभव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इनसे मुक्त है उसमें निरंतर एक सुख रहेगा, आनंद की अवस्था है हर समय। जो जिसमें ये सब नहीं है वो हर समय दुख की अवस्था में है। अध्यात्म का लक्ष्य ही अनुभव, अध्यात्म का ही लक्ष्य ही है हमारी स्थिति ऊपर ऊपर जाती जाए। जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे ये अनुभव बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे आकर्षण संसार के कम होते जाएंगे, व्यक्ति वस्तु पदार्थ अपने ही पुराने संस्कारों का जो आकर्षण है उससे भी आत्मा धीरे धीरे मुक्त होकर ऊपर ऊपर उठेगी। जैसे जैसे ऊपर उठेगी वो एक निरंतर आनंद की अवस्था में रहेगी, एक ऐसी आनंद की अवस्था कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते, परंतु वो आनंद की अवस्था में एक, तो वो अवस्था है फरिश्ता स्थिति। दूसरी एक परिभाषा दी है बाबा ने, तीसरी फरिश्ता की, पहला तो संसार, फिर संस्कार, फिर तीसरा है डबल लाइट, डबल अर्थात दोहरा हल्कापन। कौन सा? तो निजी लाइट स्वरूप, स्मृति स्वरूप में कहां तक रहा? एक तो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, स्वधर्म स्वस्वभाव कल था ना, पर धर्म जो है, प्रकृति जो है, उसमें जो कुछ है वो दुख है, देह से संबंधित सारा कुछ दुख है, आत्मा से संबंधित जो कुछ है सब में सुख है। तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति में कहां तक रहा? साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, एक तो ये स्वस्वरूप में स्थित रहना, दूसरा हल्कापन, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहां तक लाइट अर्थात हल्के रहे, मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहां तक सफल रहे। तो जो भी व्यर्थ समय, संग, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इन सब में कहां तक परिवर्तन करने में हल्के रहे, ब्राह्मण परिवार में, संबंध में, सेवा में, संबंध सेवा के संबंध में कहां तक हल्के रहे। तो डबल लाइट के कितने सारे अर्थ है, सबसे पहला तो निजी स्वरूप में स्थित होना, फिर हल्कापन, हल्कापन में भी स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहां तक हल्के रहे, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें कितना हल्कापन है, पुरुषार्थ करते करते ही भारीपन तो नहीं आ गया, फिर व्यर्थ को समर्थ करने में कितना हल्कापन रहा, क्योंकि व्यर्थ का बोझ होता है, जो भी व्यर्थ समय संग वातावरण कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इसमें भी हल्कापन परिवर्तन करने में, फिर संबंध संपर्क में हल्कापन, फिर सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। सेवाएं तो कर रहे पर जैसे ही सेवा के क्षेत्र में जा रहे देखा कई लोग गलतियां कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारी चीजें वैसी नहीं हो रही है जैसे हम चाहते हैं, तो वहां पर मन भारी हो रहा है। देख रहे हैं वो नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए था, देख रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेवारियों को ठीक से नहीं निभा रहे, तो वहां पर भारीपन है, वो फरिश्ता की स्थिति नहीं है। संबंध संपर्क में हल्कापन और सेवाओं में हल्कापन, सेवा जैसे कर रहे बस किया और उससे मुक्त, इतना उसमें वो जो लाइटनेस की अवस्था है सेवा की, वो फरिश्तापन की स्थिति है। उसमें यदि चित्त मन भारी हो रहा है वो हल्कापन नहीं है, वो सब तो अच्छी बात है, वो सब याद रहना चाहिए। जब बुद्धि का काम है हम कर्म क्षेत्र में हल्कापन रहना ही फरिश्ता स्थिति है। जैसे हम ड्यूटी में पहुंचे वहां से लेकर तो जब तक है वो है रियल पुरुषार्थ, वो हम, ये तो हमारा बैकग्राउंड है सारा, 9 से 5 के बाहर हमारा मेन जो फिल्म की जो टेलीकास्ट हो रहा है वो 9 से 5, दर्शक हमको जो देख रहे हैं वो तुम्हारी तैयारी नहीं देखता है, तुमने क्या किया, अमृत वेला किया नहीं किया, मुरली सुनी नहीं थी, चिंतन किया नहीं किया, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। दर्शकों को लाइव टेलीकास्ट जो तुम्हारा चालू होता है 9 बजे वो सब बैकग्राउंड में हो रहा है। बरबाई लक्ष्मण भाई 9 से 5 उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या स्थिति थी, उसमें हलचल में है हम तो लोग सोचेंगे हलचल में, बाकी आपने 5 बजे के बाद स्वयं को ठीक कर लिया, फिर ज्ञान की बड़ी बड़ी चर्चाएं और चिंतन और फरिश्ता और अव्यक्त स्थिति और बड़ी बड़ी देही अभिमानी स्थिति निरंतर याद में कैसे रहे, वो सारा अभ्यास, परंतु कर्म क्षेत्र में हलचल, कर्म क्षेत्र में द्वंद, कर्म क्षेत्र में युद्ध, कर्म क्षेत्र में संस्कारों की टक्कर, कर्म क्षेत्र में वो सब कुछ हो रहा है जो कि होना ही नहीं चाहिए। कर्म क्षेत्र में इतना दिमाग भारी है वो बंद हो जाता है चलना, परिस्थिति ऐसी ऐसी आती है नई नई हर दिन, जो कभी स्वप्न में नहीं सोचा वो चीज होती है, तो कैसी फरिश्ता स्थिति रहेगी। योगी जीवन कह रहे हैं ना, हम सुबह कितना भी योग लगा लिया, शाम को कितना भी योग लगा लिया, सुबह और शाम तो शक्तिशाली बना दिया, पर बीच का क्या, उसका आधार भी वो दोनों ही है। जितना वो सुबह का शक्तिशाली होगा उतना ही वो दिन का भी शक्तिशाली होगा, फिर वो कम शक्तिशाली तो ये कम शक्तिशाली, अगर दोनों ही शक्तिशाली और फिर भी बीच का कम शक्तिशाली है तो जरूर कुछ चेकिंग करने की आवश्यकता है कि और कहाँ गलती है। ऐसी बहुत सारी हमारी बुद्धि में पॉइंट्स चाहिए कि जो हम यूज कर सके उस समय, हम उस पॉइंट्स को यूज नहीं कर रहे, हमारी पॉइंट पॉइंट बनकर रह गई है, प्रैक्टिकल में नहीं आ रही है वो, क्योंकि प्रैक्टिकल में यदि हमें भारीपन आ रहा है, प्रैक्टिकल में अगर रोब आ रहा है और क्रोध आ रहा है और ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है या भारीपन आ रहा है, ऐसा लग रहा है इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारे ही संकल्प आ रहे, उसके बाद भले हम शाम को ड्रामा पर क्लास करा दे कि ड्रामा कितनी एक्यूरेट है, परंतु हम खुद हलचल में है उसको क्या कहेंगे। वही कह रहा हूँ ना कि वो सब चीजें आएगी, उसमें स्वयं को कैसे सेफ रखना है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण वही चीज है कि हमें स्वयं को बचाना, पर वहाँ बचाना कम महत्वपूर्ण हो जाता है, जीत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। हमें जीतना है, हम कैसे ये करें? हम अपने को बचाने के लिए अपना जो मैं है उसको झुकाना पड़ेगा वहां पर, वो हम झुकाने के लिए वहां राजी नहीं होते, वहां हमारे सामने जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्ञान योग थोड़ा सा सेकंड नंबर पे जाता है, स्थिति सेकंड नंबर पे जाती है, ज्ञान सेकंड नंबर पे चला जाता है, वहां हम हमारा अहंकार ज्ञान योग से ऊपर उठता है। हर वो चीज जो हमें, सबसे पहले तो ये जो कर्म क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण क्या है, सेवा महत्वपूर्ण है, स्थिति महत्वपूर्ण है, या संबंध संपर्क महत्वपूर्ण है, हमारे रिलेशंस कितने महत्वपूर्ण है, तीन चीजें हैं। इन सब में टॉप प्रायोरिटी किसको दी जाए? एक तो रिलेशन मेंटेन करना है, दूसरा स्थिति हमारी अच्छी रहे, और तीसरा है काम होना चाहिए, जो सेवा है वो होनी चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी की वजह से नुकसान होता है और हम उसे डांटते हैं तो यहाँ फिर लड़ाई है रिलेशंस और सेवा की। किसी ने नुकसान कर दिया कुछ, हमने उसे डांटा, हमारे संबंध बिगड़ गए, पर सेवा ठीक रही, या सेवा का जो हुआ वो होगा, परंतु सेवा तो होती रहेगी, पर जो टूटा, जो क्रैक उसमें आई संबंध में, वो कभी नहीं जुड़ने वाली, उसके भी ऊपर स्थिति। इन तीनों में से टॉप प्रायोरिटी किसको दी जाए? स्थिति, सेवा और रिलेशंस। सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी स्थिति, जो भी हो जाए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो नहीं होंगे, अगर स्थिति शक्तिशाली है तो नहीं होगा। हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी स्थिति, सेकंड प्रायोरिटी है रिलेशंस, लास्ट प्रायोरिटी है सेवा। और हम जो करते हैं वो इसको उल्टा कर देते हैं, हमारे इधर सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेवा एक्यूरेट हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, सब अपनी रिस्पॉन्स, सब सेवा अपनी संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, पर जरूरी नहीं है कि वो लोग सेवा रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे, वहां क्रोध का कारण है। परंतु निरंतर कर्म क्षेत्र में ये ध्यान रखना है कि मेरी स्थिति, क्योंकि अगर स्थिति गिर गई तो फिर सब गिर जाएगा, फिर तो संबंध भी नहीं रहेंगे ठीक। स्थिति इज द टॉप प्रायोरिटी, सेकंड लेवल पे रिलेशंस, क्योंकि रिलेशंस भी अगर टूट गए, सेवा तो हो जाएगी, सेवा की भरपाई हो सकती है, संबंध की वो नहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल है, जो क्रैक आ गई वो आ गई हमेशा के लिए। ये तीनों चीजों को रखना है, तो हल्कापन होना चाहिए हर चीज में। तो उसमें भी बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार के संबंध में हल्कापन, सेवा के संबंध में कहां तक हल्के रहे, सेवाओं में हल्कापन, इसको कहा जाता है फरिश्तेपन की तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज करो, अर्थात परिवर्तन करो, अपने ब्राह्मण जन की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सहज सिर्फ एक विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप स्वसमर्थी स्वरूप बन जाते हैं। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना, तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजोरिटी है और सदा शक्तिशाली है, यथाशक्ति के मेजोरिटी में माइनॉरिटी है। स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया, अब विशेष जैसा स्नेह से मनाया वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। सुना रिजल्ट, आगे क्या करना है? यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप, तो देखेंगे इस वर्ष में मेजोरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। टीचर्स क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगी? सदा शक्तिशाली, आपको आपका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस किस ग्रुप में आए हैं, सभी टीचर्स का सम्मेलन अभी होने वाला है, अब तक की रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी, किसको जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा, तो कब वाले को हो या अब वाले हो, शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो, पांडव क्या समझते हो? देखो नाम सबके नोट है, अभी नाम नहीं सुनाते, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे, समझा? तो यहाँ बाबा सदा शक्तिशाली बनने के लिए कह रहे हैं और दृढ़ संकल्प करने के लिए कह रहे हैं। दृढ़ संकल्प अर्थात अब, साधारण संकल्प अर्थात कब? अब करना है, आज करना है, अभी करना है, अभी प्लानिंग बनानी है, जो कुछ करना है आज प्लानिंग बनानी है। जो संस्कार अब तक नहीं मिटा है वो कौन सा है? तीन निकालो, उस तीन में से केवल एक पर ही फोकस करो, बस ये है वो, ये एक ही नहीं बढ़ने दे रहा है। सारे दुखों का कारण ये एक संस्कार है। ब्राह्मण जीवन की खुशी जिसने छीन ली है वो ये एक संस्कार है। ब्राह्मण जीवन में, अध्यात्म जीवन में जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है वो ये एक संस्कार है। उसको ढूंढो बस, उसकी छानबीन खोजबीन करो और उसको देखो, उसके स्वरूप को जानो, तो वो जैसे ही समाप्त हो जाएगा हम ऊपर उड़ेंगे। हमारी स्थिति सारों को ही देखना है बस उनके, हमें वो पूरा क्लियर पता नहीं ना, वो संस्कार इतने धूमिल है, इतने धुंधले से है, हमारे सामने बाधा है पर हम उसे पूरी तरह नहीं जानते। इसके लिए उसके लिए उसके बारे में कभी लिखना भी बहुत अच्छा एक साधन है। उसको लिखो ताकि वो क्लैरिटी आए, ये है हमारे मन में जो संकल्प चल रहे हैं उन्हें ही साक्षी होकर देखो। जैसे वो अनादरा पर दिखते हैं ना नीचे बादल, वो बादल घूम रहे हैं, हमारे विचार रूपी बादल जो आसमान में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, विचर रहे हैं, उनको देखना, स्वयं को स्वयं साक्षी होकर देखना, स्वयं के विचारों को ही साक्षी होकर देखना। इस पांच मिनट में, इस एक घंटे में क्या क्या चल रहा है उसमें, उसको रोकने का प्रयत्न नहीं करो, आ रहे तो आने दो, खाली देखना है बस। ये भी एक पुरुषार्थ है, विचार आना है, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, उसका एनालिसिस, उसका विवेचन बाद में करो, विश्लेषण बाद में करो, खाली देखना उसको, फिर सोचो कि ये भी आ रहा है उसमें, ये भी हो रहा है अभी भी। तो दृढ़ संकल्प अर्थात अब, साधारण संकल्प अर्थात कब, सबसे ज्यादा संख्या किस जोन की आई है, देखेंगे पंजाब इंदौर क्या कमाल दिखाते हैं। टीचर्स भी ज्यादा आती है, संख्या ज्यादा तो टीचर्स भी ज्यादा होती है। पंजाब वाले नंबर वन लेंगे या सेकंड, इंदौर भी नंबर वन लेंगे, और कर्नाटक क्या करेगा, कौन सा नाटक दिखाएंगे, कर नाटक, तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना। और महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे ना, हरेक को उठा जाएगा, महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे। और यूपी को क्या कहते हैं, यूपी में नदियां है अर्थात यूपी पतित को पावन करने वाली है, पावन बनाने में नंबर वन, तो यूपी वाले भी नंबर वन बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर टू नहीं कहेंगे, राजस्थान तो है ही लकी, जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है, हेडक्वार्टर राजस्थान में है ना, तो जहाँ हेडक्वार्टर है वो क्या होगा, हेड बनेगा ना, तो राजस्थान हेड बनेगा, कर्नाटक अच्छा नाटक दिखाएगा हीरो, और यूपी पतित से पावन वो भी नंबर वन, महाराष्ट्र तो है ही मान, पूछने की जरूरत ही नहीं, सब एक दो से आगे है, नहीं वो नहीं है यहाँ सभी खुशी से कह रहे हैं नंबर वन, लेकिन वहां जाकर ऐसे नहीं करना, क्या करे, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है, ऐसी भाषा सोचना भी मत। अच्छा डबल विदेशी, ये तो भारत वाले हो गए, अभी डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छा कर रहे हैं, और रेस में नंबर वन आना ही है, देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बनाए, वो विदेश से भी आगे है, देश वाले एक दूसरे से आगे, ये देश से भी आगे, हम हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी, इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है, समझा, इसी को स्मृति में रख, सहज बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। अच्छा तो क्या सुना, फरिश्ते की परिभाषा, सबसे पहला संसार से कोई संबंध नहीं, संसार में व्यक्ति, देह, देहधारी वस्तु, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। नेक्स्ट संस्कार, कोई भी संस्कार ना वृत्ति में, ना संकल्प में, ना बोल में, ना कर्म अर्थात संबंध संपर्क में प्रकट ना हो, जो कि ज्ञान के विपरीत है, जो कि ज्ञान से विमुख करे, जो कि हमें पुरुषार्थ से कहीं दूर ले जाए। तीसरा डबल लाइट, लाइट अर्थात अपने स्मृति स्वरूप में स्थित रहना, एक व्यर्थ को जो समर्थ में परिवर्तन कर रहा है उसमें भी हल्कापन, जो ब्राह्मण परिवार के संबंध में आ रहे हैं उसमें भी हल्कापन, जो सेवाओं में आ रहे हैं उसमें भी हल्कापन, हर चीज में हल्कापन, वो हल्का जो स्थिति है, निर्भार और निर्बोझ स्थिति, कोई बोझ का अनुभव नहीं, कोई भार का अनुभव नहीं, ऐसी निर्भार निर्बोझ स्थिति, ऐसी डबल लाइट स्थिति, ऐसा दोहरा हल्कापन फरिश्ता स्थिति है, वो हमें प्राप्त करनी है।
सन्यासी जंगल चले जाते हैं,
बहुत झंझट है संसार में पर वहां जाकर भी छूट नहीं पाते, वहां पर गृहस्थी उत्पन्न करते। वो सन्यासी की कथा है ना, सन्यासी और चूहे की। एक सन्यासी अकेला जंगल में तपस्या करता था, तो देखा कि एक चूहा उसे बहुत ही तंग करता था हमेशा। तो सोचा, इस चूहे का मैं करूं क्या अभी, सोचा क्यों नहीं एक बिल्ली पाल लूं, जो बिल्ली के डर से चूहा भाग जाए। तो बिल्ली पाल ली उसने। अभी बिल्ली को रखना है तो उसके दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो क्या करे। फिर एक गाय, किसी ने सोचा ये तो बहुत अच्छा, कोई गृहस्थी जो लोग आते थे उसके दर्शन के लिए बीच बीच में, उन्होंने राय दी, भाई आप एक काम करो, एक गाय रख लो, तो उससे क्या होगा, आपकी बिल्ली को दूध भी मिल जाएगा, आपको भी थोड़ा, आप भी ले सकते हो दूध। तो उसने कहा ठीक है भाई, गाय रख देता हूँ। हम गाय रखी तो गाय का सब कुछ कौन करे, गाय को खाने के लिए भी चाहिए, चारा भी चाहिए, तो और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उसने कहा उससे अच्छा एक काम करो, आप थोड़ा सा जमीन तो है ही, थोड़ी खेती भी कर लो वहां पर। तो उसने कहा विचार तो बहुत बढ़िया है, अच्छा खेती करनी है तो कोई आदमी भी चाहिए, तो क्यों ना एक शादी भी कर लो। तो शादी भी कर लेता है, तो फिर कहां से चालू हुआ और सीधा गृहस्थी बन गया। सब कुछ किस लिए किया था, साधना में कोई विघ्न ना आए, वो चूहे से चालू हुई कहानी और गृहस्थी उत्पन्न हो गई इसके लिए जो साधन है, हम उसके इतना, हम हर दिन साधनों पर हमारी जो ये है आश्रित भाव है वो कम होते जाए, जो अवलंबन है धीरे धीरे कम होते जाए। वो है, एक दिन ऐसा करो कि वो नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है, क्या हम स्थिर रह सकते हैं अगर वो नहीं है तभी भी। इसके लिए बीच बीच में साधनाएं करनी पड़ेगी। वैसे कोई भी साधन पर हम निर्भर ना हो, आज है कल नहीं होगा, हर चीज हमारी साधना इतनी स्वतंत्र हो, स्वतंत्र साधना, किसी भी चीज पर वो आधारित नहीं है। हम अकेले खड़े हैं और बस वो हमारे साथ है। जैसे विवेकानंद कहते हैं ना, मुझे ऐसे 100 लोग चाहिए जो ऐसे खड़े हो जाए और कहे कि इस संसार में हमारा ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं है, 100 सच एंड द वर्ल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, ऐसे केवल 100 और ये विश्व परिवर्तित हो जाएगा, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है ना पैसा है, कुछ नहीं है, केवल वो इतना विश्वास है कि भगवान हमारे साथ है, बस ऐसे मुझे 100 लोग चाहिए, सिंसियर टू द बैकबोन एंड ब्रह्मचारी टू द कोर, जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, ऐसे लोग चाहिए उनके ऊपर। वो जब अलग से आश्रम में वो बहराम कौन सा वो मठ है वहां पर, बेलूर नहीं, एक दूसरा जो पहले बेलूर तो अभी भी बना, उसके पहले जब वो लोग साधना करते थे, श्री रामकृष्ण की मृत्यु हो गई, अभी विवेकानंद प्रसिद्ध भी नहीं हुआ है, अभी तो केवल दक्षिणेश्वर भी नहीं, एक दूसरा है बी से कुछ चालू होता है, वो एक छोटा सा मठ लिया वो लोगों ने, कुछ कुमार लोग एकत्र हो गए और रामकृष्ण की तो मृत्यु होगी, अभी आगे करना क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग बैठ गए और शास्त्रों का अध्ययन चालू किया, तपस्या चालू की, बस यही करते थे, सुबह 3 बजे उठते थे, योग करते थे, तपस्या करते थे, सारा दिन भर ये सब करते थे। तो लोग आकर उनके ऊपर हंसते थे, ये क्या कर रहे हो तुम सब नौजवान, तुम लोगों तो काम करना चाहिए, तुम बैठकर ये क्या करते हो, भीख मांग के खाते हो, और वैसे भी तुमको क्या प्राप्ति हो रही है, कुछ अनुभव तो नहीं हो रहा है। तो उसमें विवेकानंद कहता है कि हमें यदि अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल रहा है तो क्या हम इंद्रिय सुख को भोगे, उस गटर को नहीं मिलने तो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा एक दिन, पर जब तक वो नहीं मिलता तब तक क्या हम इंद्रिय सुख ऐसी तुच्छ वस्तु को स्वीकार करें जो संसार की वस्तु है। साधना करते रहेंगे जब तक वो अतीन्द्रिय सुख, वो परम आनंद, वो परम तत्व की उपलब्धि नहीं हो जाती, पर इस संसार के भोग विलास की तरफ नहीं जाएंगे। अगर वो चाहता था तो उसको तो एडमिशन मिल सकती थी, वो एक बहुत बड़ा IAS या ICS ऑफिसर बन सकता था, वो सारे ऑफर उसको आ चुके थे, सब छोड़ दिया, सब तुच्छ लगा उसको इस संसार का जो कुछ था। तो इंद्रिय अति इंद्रिय सुख नहीं मिल रहा, योग में दिव्य अनुभव नहीं हो रहे, इसका मतलब यह है कि भोग विलास में डूब जाए। करते रहो, प्रयत्न करते रहो, मिलेगा एक दिन। तो साधना हमारी स्वतंत्र हो, किसी पर भी आश्रित नहीं, ऐसा बाबा चाहते हैं। दृढ़ संकल्प अब, साधारण संकल्प कब, तो फरिश्ता स्थिति और दृढ़ संकल्प, ऐसा हमको करना है। और ये जो वहां जाके जो कहते हो, बाबा कहते हैं ना, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसी वाचा सोचना भी मत। चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, हम कर्मयोगी है ये भूलना नहीं है, हमारा सारा कुछ कर्मयोग पर ही आश्रित है, कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म करते हुए हमें सब कुछ करके दिखाना है, इस प्रतिकूल परिस्थिति में ही संपूर्ण बन के दिखाना है। ऐसा नहीं कि अच्छी परिस्थिति मिल जाए, अच्छा योग का टाइम मिल जाए, अच्छा मैं मुझे टाइम मिल जाए तो मैं थोड़ी किताबें पढ़ू, अध्ययन करूं, चिंतन करूं, मनन करूं, ज्ञान बढ़ाऊं और फिर अच्छा योग करूं, सेवाएं थोड़ी बाहर रहे, बाजू में रह जाए, ऐसा नहीं होगा। जहां हो वही बेस्ट प्लेस है, जो टाइम मिला है वही बेस्ट टाइम है, जो लोग आसपास है दीज आर द बेस्ट पीपल, उन्हीं के बीच में रहकर संपूर्ण बनना है, उन्हीं के बीच में रहकर, वो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिकूल में ही महानताएं उभर कर आती है, महानता की पराकाष्ठा तक पहुंचना है ना, कठिनाइयों के से गुजर कर ही पहुंचोगे, वरना नहीं। वो करने दो, जो कुछ करेंगे उन्हीं के बीच में हम संपूर्ण बनेंगे। वो कलम लगाए फूलों की हम अमृत जल से सींचेंगे, कोई शत्रु बनकर आए तो उसे शिव का मीत बनाएंगे। सूरज भाई का गीत है ना, हम बड़े चले निर्भय होकर जग के अंधियार मिटाएंगे, सूरज भाई का लिखा हुआ गीत है, हम बड़े चलेंगे निर्भय होकर जग का अंधियार मिटाएंगे। वो कलम लगाए फूलों की हम अमृत जल से सींचेंगे, वो कोई कोई शत्रु बनकर आए थे उसे शिव का मीत बनाएंगे, उनके उनके विष उनके मन के विष को पीकर, क्या है आगे, उनके मन के विष को पीकर हम, बहुत सुंदर गीत है। तो वो हमारी धारणाएं हैं, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाले कोटों में कोई आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप, रूहानी बाप, बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।